ये आकाशवाणी है, अब आप आनंद श्रीवास्तव से समाचार सुनिए। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में मध्यम से तेज वर्षा ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि तेज वर्षा के कारण भूस्खलन, घर ढहने और डूबने की घटनाओं में कल से 27 लोगों की मौत हो गई है। बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण तेज बारिश हुई। 27 पीड़ितों में से 9 की मौत अरुणाचल प्रदेश में, 6 की मेघालय में, असम और मिजोरम में 5-5 और त्रिपुरा तथा नागालैंड में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई। वर्षा और भूस्खलन के कारण क्षेत्र के कई जिलों में सड़क संचार बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान देश के पूर्वोत्तर हिस्से में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही बुधवार तक केरल, माहे और कर्नाटक में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में गरज, तेज हवाओं और बिजली के साथ तेज बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी बुधवार तक इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में कोंकण और गोवा में मंगलवार तक तेज बारिश का अनुमान है। विभाग ने अगले 3 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी आने का अनुमान जताया है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवाद के खिलाफ भारत का सैद्धांतिक और दृढ़ रुख स्पष्ट करने के लिए संसद सदस्यों के 7 सर्वदलीय शिष्टमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर हैं। शिष्टमंडल किसी भी प्रकार के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के भारत के संकल्प का कड़ा संदेश दे रहे हैं। शशि थरूर के नेतृत्व में शिष्टमंडल आज ब्राजील की आधिकारिक यात्रा के लिए ब्रासिलिया पहुंचा। श्री थरूर ने कहा कि वे ब्राजील में ठोस रचनात्मक चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल लाइबेरिया में है। मीडिया से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि भारत और लाइबेरिया के बीच अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल इंडोनेशिया की सफल यात्रा के समापन के बाद आज मलेशिया के क्वालालंपुर पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सांसदों का शिष्टमंडल लंदन पहुंच गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि हम यहां भी आतंकवाद के मामले पर भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे।
लंदन पहुंच गए हैं। 3 देशों की हमारी यात्रा अच्छी रही, फ्रांस, इटली और फिर डेनमार्क की। आतंकवाद के मामले पर भारत का पक्ष हम प्रभावी रूप से यहां भी रखेंगे और जैसा हमें बाकी जगह वहां के लोगों का समर्थन मिला है वही समर्थन इंग्लैंड में भी मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे रही है। कोलकाता के राजीर हाट में नए केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भारत सरकार की ओर से हर जिले में एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन के लिए हर राज्य को सहायता ऑफर की है। हमने दूरदर्शिता के साथ कानून 24 में आया, 20 में हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर चुके थे। 26 परिसर करीब करीब हर बड़े राज्य में एक NFSU की कॉलेज हम बनाएंगे जिससे ट्रेन मैन पावर मिले।
गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश भर में फॉरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि निष्पक्ष और सटीक फैसलों के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य आवश्यक हैं। 88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सुविधा से न केवल पश्चिम बंगाल के लोगों को बल्कि झारखंड, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, असम और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी लाभ होगा।
इसमें बायोलॉजी, सीरोलॉजी, DNA परीक्षण, केमिस्ट्री, विस्फोटक, विष विज्ञान, नार्कोटिक्स, बैलिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी और फिजिक्स, इस सब डिपार्टमेंट एक साथ चालू होंगे तो राज्य की FSL में जहां विशेषज्ञ की जरूरत होगी वो सारे केस यहां बहुत सरलता से ट्रांसफर भी होंगे और इसका उपयोग भी कर पाएगा।
सरकार 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज से युवा प्रतिभाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही है। पहली प्रतियोगिता का विषय है ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को फिर से परिभाषित करना। ये एक द्विभाषी निबंध प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेताओं को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।